नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम पूर्व विश्लेषण करने वाले हैं फेज टू के चुनाव का, विशेषकर उत्तर भारत में, क्योंकि इस बार भी 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उत्तर प्रदेश की जा रही हैं, 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी राजस्थान की जा रही चुनाव में, फिर बाकी बिहार, वेस्ट बंगाल, 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी केरला की, 14 कर्नाटका की और 7 महाराष्ट्र की। ये मुख्य मुख्य हैं। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी, आपके सुपरिचित, अब तो आप अच्छी तरह से को जान ही गए होंगे जयपुर डायलॉग्स पर। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, इस बार क्या आपको लगता है कि माहौल गर्म हो चुका है और जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़ेगा?
सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वोटर टर्नआउट जो कम हुआ है वो विपक्ष के ठंडे रहने की वजह से हुआ है। इट इज जस्ट लाइक अ वन साइडेड गेम वेयर वन ऑफ द टीम्स हैव सरेंडर्ड। वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपना नाम लिखा दिया मैच में, पब्लिक आ गई तो उन्होंने देखा कि साहब टीम तो आई नहीं खेलने, एक टीम वहां जाके वार्म अप कर रही है। तो सर बात यह है कि नॉर्थ इंडिया में कम से कम, स्पेशली जहां पे भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, वहां पे कांग्रेस मैदान से, जो एक्चुअल ग्राउंड है उससे गायब है। कांग्रेस दिख कहां रही है? थोड़ा बहुत टीवी पे और यूट्यूब के चैनल्स पे दिखाई दे रही है कांग्रेस, जमीन से एकदम गायब है। और सिर्फ कांग्रेस नहीं गायब है सर, जमीन से सपा भी गायब है यूपी में, बसपा भी गायब है। हाँ,
जी
पंजाब में आम आदमी पार्टी गायब नहीं है।
ओके। और
क्यों?
हरियाणा में? अच्छा,
हरियाणा से सब गायब है।
सभी
हरियाणा में तो
गायब
बहुत ही टिपिकल सिचुएशन हो गई सर।
है।
वो हरियाणा में दिक्कत यह है कि लोकसभा में सबको पता है हारना है, और लोकसभा वैसे भी मोदी का चुनाव होता है। पॉलिटिकल पार्टी को यह भी मालूम है कि भैया देखो, लोकसभा में तो मोदी को वोट मिलना है। एवरीबडी नोज कि हम हार रहे हैं, 6 महीने 5 महीने बाद विधानसभा है, उसमें पूरी ताकत लगानी है। और सर गैर भाजपा पार्टीज की हालत बहुत पतली है, बहुत पतली है। हाँ, हरियाणा में चूंकि 4.5 साल दुष्यंत चौटाला सत्ता में रहे हैं तो उन्होंने चुनाव लड़ने लायक पार्टी फंड जुटा लिया है, तो वो ठीक ठाक चुनाव लड़ेंगे। पर उनकी झोली एकदम खाली है, बल्कि उनकी तुलना में इनेलो फिर भी उनके पास कुछ वोट, कुछ थोड़ा बहुत है। तो कांग्रेस ने जो भी, हरियाणा कांग्रेस के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं या कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा लोकसभा में खर्च कर दी तो विधानसभा में उनके पास कुछ नहीं बचेगा। आप सबसे बड़ा लोगों के सामने जो एक वो है कि भैया ये हरियाणा में अभी तक कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? और कहीं करो चाहे मत करो, रोहतक में तो कर दो। हाँ, पर रोहतक
भाजपा
में भी,
ने तो कर दिए सारे।
हाँ भाजपा ने तो कर दिया है, कांग्रेस ने नहीं किया अब तक। पर मान लीजिए हुड्डा फैमिली को पता है कि हमको लड़ना ही है, तो पार्टी डिक्लेयर करे चाहे ना करे, उनको 2 महीने पहले प्रचार शुरू कर देना चाहिए। तो सर बात यह है, पर उनके पास कुछ दाने हैं ही नहीं। और जो कांग्रेस के जो 3 गुट हैं, गैर हुड्डा गुट, किरण चौधरी, सुरजेवाला एंड शैलजा, इन तीनों की स्ट्रेटेजी ये है कि पहले तो इन बाबू बेटा को रोहतक में जबरदस्ती लड़वाओ और हरवा दो, जिससे कि ये लोकसभा में ही खर्च हो जाए और इनकी विधानसभा में दावेदारी ढीली पड़ जाए, हल्की पड़ जाए। सिंपल एक उनका फॉर्मूला है सर। हुड्डा फैमिली इस बात को समझ रही है, इसलिए अब तक वो जो है मैदान में नहीं उतरी और उतरना चाहती नहीं। उनके पास समझ नहीं आ रहा सर, लोकसभा से वैसे भाग जाए तो होगा भाई, भाग गए भाग गए भाग गए, लड़ लें तो दिक्कत। खैर, तो इसलिए हरियाणा का चुनाव फीका है। अब आ जाते हैं यूपी में। सर, यूपी में बीजेपी,
लेकिन मैं यूपी में तो आज एंट्री हो गई, आज अखिलेश बाबू की एंट्री हो गई कन्नौज में, और ये समाचार भी चल गया कि साहब अमेठी में एंट्री होने वाली है राजकुमार की, तो फिर तो कुछ गर्मी आएगी।
नहीं सर, एक बात बताऊं, मुझे एक बात बताइए, अगर अगर अखिलेश और डिंपल वाकई सीरियस होते तो अखिलेश, अगर डिंपल मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं तो अखिलेश को धुर पूर्वांचल से लड़ना चाहिए, तो उससे पूरा यूपी कवर हो जाता सर। भाई आप बताइए ना कि मोदी को क्या जरूरत थी वहां गुजरात छोड़ के बनारस में आने की, पर जब मोदी जी बनारस में आए सर, उन्होंने पूरा यूपी, पूरा बिहार और पूरा ईस्टर्न इंडिया बनारस में बैठ के कवर किया है। पूरे पूरे ईस्ट इंडिया को उससे ऊर्जा मिलती है जब मोदी जी बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, दिस शुड हैव हैपेंड विद समाजवादी पार्टी टू। और सर, आज की तारीख में पूर्वांचल ही सपा का गढ़ है, ये जान लीजिए। पश्चिम में तो मतलब भाई मुस्लिम वोट है, यादव वोट तो है ही नहीं। और जो इनका जो इटावा, जो इनका हृदय प्रदेश है मैनपुरी इटावा, वहां से डिंपल लड़ी रही है, उनके पूरे परिवार की प्रेजेंस वहां है ही है। तो अखिलेश को भी कन्नौज, वाई कन्नौज, वाई नॉट एनी अदर सीट इन ईस्टर्न यूपी?
ईस्टर्न यूपी में आजमगढ़ तो इनके लिए सेफ सीट है, वहां से लड़ सकते थे।
नहीं सर, आजमगढ़ भी सेफ सीट है नहीं असल में, क्योंकि मैं देखिए 2019 का आजमगढ़ का चुनाव, मैंने वहां पे 45 दिन रहा हूं, मैं बकायदे पूरे 45 दिन रहा हूं, और मैंने पूरी चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया था, और ऑलमोस्ट एक एक गांव में हम गए थे। सर, अगर 2014 का डाटा आप देखें और 2019 का डाटा देखें, तो 2014 में जितने वोट मुलायम सिंह जी ने लिए थे ना, उससे लगभग 20,000 या 25,000 वोट ज्यादा दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लिए थे। अब डाटा उठा के देख लीजिए 2019 में, और 2019 में अगर बहन जी का पूरा वोट ट्रांसफर ना होता तो अखिलेश जी को लाले पड़ जाते जीत के, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात सुनिए सर, अखिलेश यादव का जो इन्होंने जो अपना संगठन तैयार किया, जब इन्होंने शिवपाल चचा के संगठन को साइडलाइन कर दिया, तो इन्होंने अपनी पार्टी का एक नया संगठन बनाया, पुराने सब वफादार जो पुराने लोग थे जिनका वाकई जनाधार था, उन सबको हटा दिया गया, नए संटू भंटू जो है क्रिएट कर दिए गए। तो सर, हमने देखा कि जिस दिन चुनाव था ना आजमगढ़ में, उससे दो दिन पहले पूरा संटू भंटू गैंग पूरे यूपी से कन्वर्ज हो गया था आजमगढ़ में, और सर कुछ नहीं तो कम से कम 1,000 फॉर्च्यूनर सफेद रंग की समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के, खैर पुलिस ने वो झंडे तो उतरवा दिए थे, पर 1,000 फॉर्च्यूनर थी आजमगढ़ शहर में, और ऐसा हमें पूरी पक्की सूचना थी कि कोई ऐसी फॉर्च्यूनर नहीं थी जो कम से कम 1 करोड़ रुपया लेके नहीं आई थी, उसका 10-20-50 लाख 1 करोड़ उसका कारण था। सर जब इन्होंने संटू भंटू गैंग खड़ा किया ना, तो इनका जो मॉडस ऑपरेंडी क्या था कि हर जिले में एक संटू भंटू खड़ा करो और उस संटू भंटू को 5-10 करोड़ रुपया कमवाओ। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, जैसे आपको ध्यान होगा सर, हर शहर में साइकिल परिपथ बनाए गए थे, इफ यू रिमेम्बर। तो सर जैसे लखनऊ में 138 करोड़ रुपए का बजट था साइकिल परिपथ, वो सारा का सारा 5 करोड़ 10 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ का वो संटू भंटू को मिला था पूरे यूपी में। और इस प्रकार के 1,000 और अन्य काम थे जिसका बजट 2-4-5-10 करोड़ रुपया था, जिससे कि ये जो हमारी नई टीम है ये भी थोड़े से पैसे 4 पैसे कमा ले। तो सर जब आपने अपने इस कार्यकाल में भैया जी ने आपको 2-4-5-10 करोड़ कमवाया है, तो अब वो कर्जा उतारेंगे ना भैया जी का। तो सर आजमगढ़ में इतना पैसा खर्च हुआ था,
देखिए ना, मुलायम सिंह यादव तो बहुत कम मार्जिन से जीते थे, वो तो केवल 63,000 वोट से जीते थे शायद,
हाँ जी,
63-64 हज़ार वोट से।
हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि आज की तारीख में अखिलेश के लिए सेफ सीट नहीं है आजमगढ़।
और बहन जी ने भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया शायद आजमगढ़ के लिए।
हाँ, तो इसलिए अच्छा, नाउ ही वांटेड ए सेफ सीट। और सर, आप कन्नौज का
नहीं तो
अगर डाटा
चुनाव
उठा
लड़ना
के
उनके लिए
देखें,
क्यों जरूरी था? चुनाव लड़ना जरूरी क्यों अखिलेश के लिए लोकसभा का?
सर, पार्टी का, वोटर का और कार्यकर्ता का मोराल एकदम जीरो नहीं, नेगेटिव में पहुंच गया है, एकदम धरातल में लग गया है। तो इनको ऐसा समझ में आया होगा कि मेरे लड़ने से थोड़ा सा जो कार्यकर्ता है उसमें थोड़ा सा जोश आएगा वोटर में। सर, कार्यकर्ता और वोटर से ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों में है जो थोड़ी बहुत पार्टी को फंडिंग दे सकते हैं। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंडिंग है, इनके पास पैसे नहीं है। अच्छा, जब आप मार्केट में घूमते हैं, जमीन पे उतर के सुनिए, तो पहला वाक्य इनका सपोर्टर कहता है, अरे भाई देखो, जीतना तो इनको ही है, मींस बीजेपी को ही है। तो सर, ये तो सरेंडर करके बैठे हैं ना, पैसे इनके पास है नहीं। अच्छा, एक चीज और नोट करिए सर, 2012 में सरकार बनी, सरकार बनते ही जूतम पैजार शुरू हो गई चाचा जी से, पिताजी भी जिंदा थे। 2014 के ये चुनाव लड़े और बहुत बुरी तरह हारे, पर तब सत्ता में थे, कोई पैसे की कमी नहीं थी। 2014 हार गए, कोई बात नहीं। फिर सर, 17 का चुनाव हारे, तब भी सत्ता से ही निकल के आए थे, 5 साल सत्ता में थे, पैसे की कमी नहीं थी। 19, अभी सत्ता से गए मात्र 2 साल हुए थे, और दूसरी बात है, 19 में बहुत जबरदस्त गठबंधन था, गठबंधन था तो लोगों को आशा थी। मैं तो इतना जानता हूं कि सर पंजाब, सॉरी यूपी में ये बात चल रही थी बीजेपी सर्कल्स में कि एक कोई रिपोर्ट आई थी, उसने बोला था 25 सीट आएगी, दूसरी ने कहा था 45 सीट आएगी। मतलब यहां तक का आकलन था कि बीजेपी मात्र 45 सीट पे सिमट जाएगी, गठबंधन वो तो चलिए 64 सीट आ गई, उतनी आनी ही थी। तो देर वॉज होप कैडर में, कार्यकर्ता में, वोटर में, और समर्थक जो फंडिंग देने वाला समर्थक है उस, एटलीस्ट दे हैड होप। 22 में सर देर वॉज अगेन होप। अच्छा, 19 में बड़ा जबरदस्त सपा बसपा और सर रालोद मिल जाते हैं तो बड़ा जबरदस्त एक फॉर्मेडेबल वो बन जाता है, एक ऐसा गठबंधन जो कि हरा सकता है बीजेपी को। तो
बिल्कुल
देर वॉज,
बिल्कुल, ये तो था, बहुत चिंता थी लोगों में कि
हाँ
जो लोग मोदी को फेवर कर रहे थे उनको बहुत बड़ी चिंता थी उत्तर प्रदेश को
जी।
लेके।
अच्छा,
और कई सारे तो
2022
मुझे
में,
ध्यान है, मुझे
हाँ
ध्यान है कई सारे जो ओपिनियन पोल्स और यहाँ तक कि एग्जिट पोल्स जो थे वो इस गठबंधन को 50 सीट तक दे रहे थे।
बिल्कुल, मैं, अरे मुझसे सुनिए, बीजेपी के रिस्पॉन्सिबल लोगों की एक बड़ी, एक इम्पॉर्टेंट, एक अनौपचारिक बैठक हुई, तो उसमें सोशल मीडिया पे सक्रिय कुछ लोगों की राय जानने के लिए उनको बुलाया गया। तो एक-एक करके पूछा गया, तो सर जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा, सब लोग वही 25, 30, 40, 45, 50 वाले थे वहां पे कि बीजेपी को इतनी सीट आएगी, तो मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा सर 65 सीट आएगी, तो ना मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया गया था। ये बातें मैंने अपनी अपनी फेसबुक वॉल पे लिखी हैं, ये सारा वृतांत मैंने लिखा हुआ है फेसबुक पे, इट इज ऑल ऑन रिकॉर्ड। तो मेरा अपना एनालिसिस था सर। उसके बाद 2022 में अगेन देर वॉज होप, है ना, और कुछ लोगों को तो वाकई गलतफहमी हो गई थी कि समाजवादी पार्टी वापस सरकार बना रही है। हैं, आप याद कीजिए आजम खान के बेटे का बयान, आप याद कीजिए मुख्तार अंसारी के बेटों का बयान, कि सरकार बनेगी तो सबसे एक एक पैसे का एक एक
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
हिसाब लिया जाएगा।
धमकियां दी थी अफसरों को,
धमकियां देने लग गए थे। इतनी बड़ी गलत फहमी थी कि हम तो वापस सरकार बना रहे हैं। खैर सर, अखिलेश के जीवन का पहला चुनाव वो लड़ रहे हैं जहां देर इज नो होप, और सर ये हताशा जो है ऊपर से लेके नीचे तक।
देखिये कन्नौज में पिछली बार सुब्रत पाठक जो थे वो मात्र 12,000 वोट से जीते थे, और जब उसका विश्लेषण, जैसे हमने भी ओपिनियन पोल एग्जिट पोल किए थे और उसका जब विश्लेषण किया था हमने, एग्जिट पोल में वो सीट हमने बीजेपी को दी थी, और हमारा विश्लेषण का आधार ये था कि जो दलित वोट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ था डिम्पल जी को, और फिर भी वो 12,000 से ही हारी थी। तो इस बार अखिलेश के आने से अंतर नहीं पड़ेगा क्या?
सर मैं आपको बताऊं, देखिए आप अगर कन्नौज की डाटा उठा के देखें तो कन्नौज में लगभग 11 से 11.5 लाख के बीच में वोट पोल होता है, और दोनों पार्टियों का, सपा का और भाजपा का, लगभग 5.5 लाख वोट है। 5.5 सुब्रत पाठक को मिलते हैं, लगभग 5.5 मतलब 5.65 के आसपास है, इतना ही दोनों का है, 5.5 मान लीजिए। सर बसपा एक फैक्टर है जो, अच्छा बसपा ने वहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, एक और मुस्लिम कैंडिडेट, एक और मुस्लिम कैंडिडेट था जो कि पल्लवी पटेल की पार्टी से था, पर वो कल जो है सरेंडर कर गया। जैसे ही अखिलेश जी का नाम आया तो अखिलेश जी का जो भी था वो सरेंडर कर गया, उसने छोड़ दिया है। पर बसपा का कैंडिडेट अभी भी है, पहली बात। और निश्चित रूप से सर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश जी के आने से कन्नौज वाकई गर्मा जाएगा और एज सपा को ही मिलेगी, एज सपा की बात ही है, कन्नौज सपा जीत सकती है। बट अगर अखिलेश जी समझदारी करते, अगर अखिलेश जी में लीडरशिप का गुण होता, यदि पार्टी में कॉन्फिडेंस होता, तो अखिलेश जी कन्नौज बोलते कि ये आप संभालिए, पार्टी काडर और पूरा पूरा कुनबा है सर, इनके कुनबे में जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर और कोऑपरेटिव बैंक से लेकर 50 से ज्यादा पदाधिकारी हैं पूरे कुनबे में, खानदान में। तो बोलिए भैया इस रीजन को आप संभालिए, डिंपल जी चुनाव लड़ रहे हैं उनको चुनाव लड़वाइए और पूरा रीजन संभालिए, मैं पूर्वांचल संभालता हूं। फिर कितनी रैलियां की आप बताइए मुझे, पिछले एक महीने में अखिलेश यादव ने कितनी रैली की?
2-4।
ईद के बाद बोले कि मैं जाऊंगा पीलीभीत, क्यों नहीं कर रहे सर? एक सिवाय ट्वीट और फेसबुक पोस्ट के अखिलेश जी करते क्या है पार्टी के लिए, आप बताइए।
नहीं कभी कभी तो जाते हैं, अमरोहा गए थे ना अभी।
सर एक दिन में 10 सभाएं करनी चाहिए,
और गाजियाबाद में भी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
तो सर वो लोगों को पता है कौन कितने सीरियसली चुनाव लड़ रहा है, कितनी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ रहा है, और सर चुनाव तो जमीन पे दिखाई देता है ना। और सर चुनाव दोनों पार्टी मिलके गर्माती है, एक पार्टी ठंडी पड़ी रहेगी तो दूसरी कहां तक गर्म करेगी चीज माहौल को।
गरम तो मोदी जी ने कर दिया पिछले 2-4 दिनों में, हमारे थैंक्स टू हमारे पप्पू जी के वजह से।
ना सर वो उससे गर्मी आएगी नहीं। सर आप भी तो सामने से कहते, दोनों पार्टी जब तक गर्म नहीं होगी, पक्ष विपक्ष दोनों जब गर्माएगा तब जाके माहौल गर्माता है। आप एक तरह से गर्म करते रहिए, जमीन पे कोई गर्मी नहीं पहुंचेगी सर। आप देख लीजिएगा।
अच्छा,
जमीन जमीन पे, क्योंकि जमीन पे मैं देख के आया हूं सर, इतना ठंडा माहौल है आप सोच ही नहीं सकते, इतना ठंडा माहौल।
खर्चा नहीं कर रहे क्या अखिलेश जी? बिल्कुल ही
खर्चा आप मैंने एक कार्यकर्ता से पूछा कि अरे दारू और मुर्गा तो चल रहा होगा, बोले अरे सर क्या बात करते हो, दारू मुर्गा चाय तक पीने को नहीं मिली।
चाय
नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चाय नहीं पिलाई। वो कहते हैं पहले फिर भी पार्टियां पर्ची बांटती थी, अब तो वो भी बीएलओ पर घर घर पर्ची पहुंचा रहा है।
आप तो बीएलओ पहुंचा देता तो कांटेक्ट का मोजरिया भी जो है वो कम हो गया
है। और सर उसका कारण है, उसका कारण है कि इनके जितने भी प्रत्याशी हैं सबको पता है हम हार रहे हैं, तो क्यों खर्चा करें?
दानिशली तो लगा हुआ है अमरोहा में, अमरोहा में दानिशली तो जम के लगा हुआ है
सर। वो इंडिविजुअल केसेस है, वो इंडिविजुअल दानिशली के सर सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, वो क्यों नहीं दान? अच्छा लड़ाई में भी है दानिशली है तो दानिशली तो, पर सर ऐसे कितने दानिशली है यूपी में?
हाँ लेकिन अमरोहा में जो कंवर सिंह तंवर हैं वो पिछली बार भी 45% वोट लेके आए थे, जबकि ये दोनों साथ साथ थे, अब दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। दानिशली और सामने भी मुसलमान कैंडिडेट है बीएसपी का।
हाँ
तो इसमें तो मुझे तो साफ निकलती दिख रही है बीजेपी। यद्यपि कई लोग कह रहे हैं कि सीट फंसी हुई है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अमरोहा की सीट फंसी हुई है।
नहीं मुझे भी नहीं लगता।
और फिर इस राउंड में जो 8 सीटें हैं आपकी, अमरोहा से शुरू होते हैं तो अमरोहा, मेरठ, बागपत और इधर आपके गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर,
मथुरा, अलीगढ़
और मथुरा
जी,
इसमें ऐसी कौन सी है जहां पे
कोई भी नहीं
लड़ाई है?
जो थोड़ा बहुत अमरोहा है, जो भी जहां पे थोड़ी बहुत लड़ाई है वो अमरोहा है।
अलीगढ़ में कह रहे हैं सतीश गौतम की बड़ी विरोध हो रहा है और सामने भी बीएसपी ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा कर दिया।
इनको मैं चुनावी जुमले बोलता हूँ कि वो विरोध, जब भी टिकट वितरण होता है तो थोड़ा बहुत विरोध होता है, वो सारा विरोध विरोध जो है वो खत्म हो जाता है चुनाव जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन आप रिजल्ट देख लीजिएगा। और सर अलीगढ़ तो वैसे भी बीजेपी के संगठन में सेफ सीट मानी जाती है, आज तक कभी नहीं मतलब अलीगढ़ फंसी है बीजेपी की, उसका समीकरण ही ऐसा है। तो अलीगढ़ भी सर थर्ड फेज में कुछ सीटें आएंगी, संभल जैसी, जहां थोड़ा सा फिर से लड़ाई होगी।
संभल में तो मामला टेढ़ा है।
नहीं पर वहां पर भी 2-3 मुस्लिम कैंडिडेट है ना, 3।
तो एमआईएम का भी होगा।
हाँ
वहां तो एमआईएम का भी मुस्लिम कैंडिडेट होगा ना।
हाँ हाँ वहां तो मतलब, और संभल की तो लोकल पॉलिटिक्स भी ऐसी है कि वहां पे वो बर्क साहब के जाने के बाद उनका पोता जो है उसको वो राजनीतिक विरासत मिली है, वो पहले एमएलए था, तो लेट अस सी। और सर संभल तो एकमात्र मतलब संभल वो है कि जैसे जल प्रलय में अंतिम टापू है, अगर संभल डूब गया तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं
है। नहीं बचा ना, गाजीपुर तो बचा ही हुआ है, गाजीपुर तो सेफ लग रहा है इस बार।
नहीं गाजीपुर जीत रहे सर हम, क्योंकि गाजीपुर सर मनोज सिन्हा जी जब तब हारे थे जब सपा बसपा के दोनों के कैंडिडेट्स एक थे। हाँ तो इस बार गाजीपुर निकल जाएगी, इस बार गाजीपुर नहीं फंसी है।
हाँ लेकिन कह रहे हैं कि साहब के वो मुख्तार के फेवर में केवल मुसलमान ही नहीं है, बहुत सारे उनके जो लाभार्थी थे मुख्तार के वो भी हैं।
सर ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मुख्तार का कोई लाभार्थी नहीं था। मुख्तार ने अपने परिवार के अलावा कभी किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। हाँ कुछ लड़कों को बियर पिलाकर, बियर पिला के जो है वो जो है हत्यारा बना दिया है, हथियार दिया कि जाओ फलनवा को मार दो। हजारों बच्चों, हजारों घर बर्बाद किए हैं। और कुछ सर ऐसे जो रॉबिनहुड छवि वाले, कुछ लोग रॉबिनहुड छवि बनाने की कोशिश करते हैं ना कि 10-20 लोग महिलाओं बच्चियों की शादी वादी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया, अदरवाइज इनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है इलाके में? तो सर उसका कोई लाभार्थी नहीं है। कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले, कुछ उसके साथ जो ठेकेदारी करने वाले लोग थे। और सर होता क्या है कि वो गांव में जो दो गुट होते हैं ना, एक गुट अगर कहीं है तो उसका विरोधी गुट को दूसरे गुट की तरफ जाना मजबूरी होती है, उस चक्कर में जरूर कुछ वोट मिल जाता है, अदरवाइज नहीं। हाँ, सपा का जो डेडिकेटेड वोट है यादव जी लोगों का, वो मिलेगा। तो बस एम वाई कॉम्बिनेशन से जो मिल जाए तो मिल जाए।
मेरठ में तो एम वाई नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट उतारी है समाजवादी पार्टी ने, वो दलित समुदाय की है, तो उसको क्या दलितों का वोट मिलेगा या दलित का वोट बसपा के साथ ही रहेगा?
सर दलितों का वोट बसपा के साथ ही जाएगा, और अल्टीमेटली मेरठ आराम से गोविल जी निकाल लेंगे। और सर गोविल जी के साथ एक बड़ा भावनात्मक आम पब्लिक का संबंध रहा है, स्पेशली महिलाएं तो मतलब उनको देख के एकदम भाव विवल हो जाती हैं। और सर मैं आपको बताऊं, जब अक्षत पूजित अक्षत वितरण हो रहा था ना रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो सर उस सेंटिमेंट को मैंने अपनी आंख से देखा है। मेरे घर भी कुछ सज्जन आए थे सर, उस वक्त जो इमोशन था ना लोगों का, ऐसा लगता था कि भगवान राम स्वयं आए हैं उन उस अक्षत के रूप में। हमें मन में जो फीलिंग आ रही थी, हमें लगता था कि भगवान राम स्वयं हमारे दरवाजे पे पधारे हैं। सर जो लोग लेके आते थे ना अक्षत, लोग उनके पैरों में लेट जाते थे, क्योंकि हमको लगता था कि भगवान राम के अक्षत आए हैं, अयोध्या जी से अक्षत आए हैं। जब अरुण गोविल के साथ जो भावनात्मक लगाव है ना सर, उसको लोग समझ नहीं पाते।
अच्छा ये तो बताया कि दो दिन से जो राहुल गांधी गाली गलौज कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट है?
सर देखिए, राहुल गांधी जब आदमी एकदम आखिरी छोर पे पहुंच जाता है ना, तो वो टोना टोटका, नीम हकीम है, मन्नत वन्नत सब कुछ ट्राई करता है। सर राहुल जी इज नाउ डेस्परेट, उनको पता है कि वो हिस्टोरिक लो इस बार टच करने जा रहे हैं।
सच में?
और मैं सर जब मैं कहता हूं कि मुझे पूरा शक है कि राहुल जी जो है 30 के आसपास टिक सकते हैं, 30 सीट्स।
तो भाई वो तो कह रहे हैं कि राजस्थान में बहुत सीटें निकालने जा रहे हैं।
आप बताइए राजस्थान में कितने, दो या एक या दो
उनके हिसाब से? राजस्थान में तो उनकी सीटें जो है वो 5 तक आ सकती।
नहीं, ये आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं?
नहीं, मैं कह रहा हूँ। वो तो 15 सीटों की बात कर रहे हैं।
नहीं, अगर सर 5 सीट आ गई ना, तब तो फिर 30 ब्रीच हो जाएगा।
यही तो है, यही एक कठिन समस्या लग रही है।
अच्छा, अदरवाइज सर 30। सर सीधे सीधे 8 सीट का नुकसान तो पंजाब से हो रहा है।
हाँ, अच्छा मुझे बताइए, आप पंजाब का क्यों कह रहे हैं 8 सीट नुकसान हो रहा है? पंजाब में कैसा क्या हो गया?
सर मुझे, मैंने इधर जब से पंजाब से पे वीडियोस बनाने शुरू किए ना, तो एक तो आई एम द ओनली पर्सन हु स्पीक्स आउट इन पंजाब, अदरवाइज पंजाब का हिंदू तो इतना डरता है कुछ बोलता ही नहीं, पंजाब का कोई यूट्यूबर जो है वो बोलता नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैंने अपना फोन नंबर भी दे रखा है। इस वजह से क्या है कि लोग मुझे फोन करते हैं, सर आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी वो ठीक ठाक चल रही है, उसके बाद सर मुझे कम से कम 20 फोन आ चुके हैं और गांव से आए इस बार फोन। और सर ये जो मिथ है ना कि जट सिख वोट नहीं देगा, पहली बात तो ये मिथ टूट रहा है इस बार। नंबर दो सर की जो मजहबी सिख है ना वो आ रहा है इन बिग नंबर्स बीजेपी में, और हिंदू कंसोलिडेट हो रहा है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर अकेले हिंदू से काम नहीं चलता सर, अकेले हिंदू से सीट नहीं निकलती जब तक मजहबी सिख प्लस जट। तो सर मैं ये आपको गांव से बता रहा हूं। अभी मुझे एक फोन किया एक आदमी ने, उसने बोला जी, अच्छा एक जीरकपुर से फोन आया आज, कहते जी 14,500 वोट है। उनके जिस लोकलिटी की बात हो रही थी उसमें 14,500 वोट है। कहते सर 250 वोट होगी सिखों की और कुछ और हैं, बाकी 14,000 वोट हिंदुओं की हैं। कहते 14 की 14 बीजेपी को पड़ेगी।
अच्छा ये सर, ये आनंद जीरकपुर तो आनंदपुर साहिब में लगता है।
हाँ जी नहीं, आनंदपुर साहब में नहीं लगेगा, जीरकपुर लगेगा इसमें फतेहगढ़ साहब में।
नहीं मेरे ख्याल से लगता है क्योंकि मैं यहाँ आनंदपुर साहब का ऑब्जर्वर रहा हूँ, ये ध्यान है जीरकपुर।
अच्छा जो भी है
आगे मोहाली के साथ में लगता है।
मुक्तसर से मलोट से फोन आया, कहते जी अच्छा। हमारे यहाँ हमारे गांव में 2,000 वोट है, लगभग 1,400 पोल होगी, 300 से लेके 350 वोट मजहबी सिखों की है, वो बीजेपी को पड़ रही है, प्लस कहते प्रजापति वोट वो बीजेपी को पड़ रही है।
अच्छा प्रजापति क्या है, रामगढ़ियों को प्रजापति कहते हैं?
नहीं, कुम्हार। अच्छा सर क्या हुआ कि अभी आम आदमी पार्टी के एक एमएलए साहब थे, वो कहीं किसी चुनावी सभा में बोल रहे थे, किसी को चैलेंज वैलेंज कर रहे थे, तो सर उन्होंने कहीं सभा में बोल दिया कि मैं कोई गुल्लीगढ़ नहीं हूं। गुल्लीगढ़ ये एक इट इज अ डेरोगेटरी स्लैंग विच दे यूज फॉर रामगढ़िया, जो जो रामगढ़िया कम्युनिटी है उसके लिए बोलते हैं। मैं कोई गुल्लीगढ़ सुनियारा नहीं हूं, मतलब वो बड़ा डेरोगेटरी कमेंट था, उसको बड़ा बुरा माना। अच्छा इसके बाद सर ये जो हमारे यहाँ के जो जो दलित समुदाय है इसको जो सवर्ण लोग हैं वो गिट्टड़ बोलते हैं, हैं? वही अनदर डेरोगेटरी वर्ड विच दे यूज। सर इन चीजों का बड़ा बुरा मानते हैं लोग और वो सारी बातें अब निकल के आ रही हैं। तो सर जितना भी ओबीसी वर्ग है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसके अलावा जितना हिंदू दलित सिख दलित वो शिफ्ट हो रहा है, प्लस जितने डेरे हैं, जितने डेरे हैं ऑलमोस्ट 99% डेरे वो सब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बड़े से बड़ा डेरा का नाम, बड़े डेरे का नाम ले लीजिए या छोटे से छोटे का ले लीजिए,
नुकसान किसे हो रहा है?
जैसे नुकसान तीनों पार्टियों को हो रहा है। बीजेपी जो गेन कर रही है वो सर हिंदू वोट, देखिए हिंदू और दलित ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोट रहा है तो सबसे पहले तो उनको हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने जो गेन किया था वो कांग्रेस प्लस अकाली प्लस बीजेपी तीनों पार्टियों का वोट आम आदमी को शिफ्ट हुआ था, वो सारा वोट जो है अपनी अपनी जगह वहां से वापस लौट रहा है, तो वापस लौट रहा है तो कांग्रेस में नहीं जा रहा, बीजेपी की तरफ हो रहा है। जो भी आम आदमी पार्टी का वोट वापस लौट रहा है तो पंथिक वोट अकालियों का तो अकालियों में जा रहा है, परंतु अन्य जो हिंदू वोट और बाकी जो था वो सब लौट के बीजेपी में आ रहा है, कांग्रेस में वापस नहीं जा रहा। पंजाब का तो ये हाल है।
तो इसका मतलब जो 8 सीटें जीती थी इन्होंने वो साफ हो जाएंगी
सर इस बार, अगर कांग्रेस एक एक आध सीट पे अगर सिमट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कांग्रेस की एक ही सीट आई या वो भी नहीं आई, क्योंकि अभी तो सर चुनाव में कम से कम भी 35 दिन पड़े हुए हैं।
हाँ इनको तो लास्ट फेज में है।
हाँ अभी तो चुनाव गरमाएगा,
1 जून को है चुनाव तो।
हाँ जी चुनाव 1 जून को है, तो सर ये बड़ा अच्छा दूसरी एक चीज है, गुंडागर्दी अपने चरम पे है। आज हरियाणा से भी एक वीडियो आई है, वो खूब चल रही है, हरियाणा के बीजेपी के एक प्रचार वाहन को गुंडा पार्टी ने उनका जो है पोस्टर पोस्टर फाड़ दिए, उसका वो जो प्रचार वाहन था उसको तहस नहस कर दिया कि बीजेपी का वाहन सड़क पे नहीं दिखना चाहिए। सर ये गुंडागर्दी सब बीजेपी को का वोट बढ़ाएगी, आप देख लीजिएगा। और आज के जमाने में सर आज इस बार का तो पूरा चुनाव ही सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है ना, है वो जो इस प्रकार की जो वीडियो है वो खूब चल रही है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन पंजाब। पंजाब में जो है वो बीजेपी के लीडर्स को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, कुछ गुंडा एलिमेंट्स, सारी दुनिया देख रही है।
तो ये मतलब आपका कहना है कि ये जो पूरा का पूरा इन्होंने हमारे सैम पिट्रोडा साहब ने जो राग छेड़ा है, अब हम पूरा सबका जो है वो पैसा काट के और कुछ खास लोगों को दे देंगे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है।
सर उसका तो एक ही इम्पैक्ट है कि उन्होंने मोदी योगी अमित शाह को मुद्दा दे दिया है, इन राहुल जी ने और सैम पित्रोदा ने इनको मुद्दा दे दिया कि ये कांग्रेस को बड़ी जनसभाओं में घेर सकें। अदरवाइज पब्लिक इनके वादों पर, इनकी बातों पर कितना भरोसा करती है, तो हम देखने ये पिछले साल भी तो पिछले चुनाव में इन्होंने 72,000 रुपया देने का वादा किया था ना, हर हर परिवार को 72,000 रुपये, कितने लोगों ने विश्वास किया।
अब होगा न्याय।
हाँ अब होगा न्याय। तो सर पीपल हैव स्टॉप्ड टेकिंग देम सीरियसली, बिल्कुल सीरियसली लेते नहीं सर बिल्कुल इनको।
हाँ वो बस थोड़ा सा क्या है कि बीजेपी की तरफ से चुनाव गर्म नहीं होता है, तो थोड़ा जो लोकल इक्वेशंस है वो थोड़ी हावी हो जाती हैं कई जगह पे, उसका वो था तो। लेकिन अब तो मोदी जी तो फुल फॉर्म में आ गए। आइए दर्शकों के कुछ प्रश्न ले लेते हैं। उससे पहले दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप जो QR देख रहे हैं हमारे राइट हैंड साइड पे टॉप पे, उस QR को स्कैन करके आप हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज्वाइन कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन प्लान ज्वाइन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें और अवश्य शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे वो नए हों या पहले से दर्शक चल रहे हों, वो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों पर। दर्शकों के प्रश्नों में पहला प्रश्न है थॉट प्रोवोकेटर, NRI रत्न फॉर विजिटिंग फैकल्टी पित्रोदा जी सर्विस। पित्रोदा जी ने बहुत अच्छा काम किया, वो जो है वो रत्न क्या है वो, उनकी भी कास्ट बताते हैं राहुल गांधी, कहते हैं ये बढ़ई है, इसलिए उनसे उनको विशेष प्रेम है। तो उनको किसी प्रकार का कोई रत्न पुरस्कार अवश्य दिया जाए, बाद में दिया जाएगा, उनकी सर्विसेज रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग, सिफारिश करेंगे मोदी जी से कि उनकी सर्विसेज रिकॉग्नाइज की जाए इस चुनाव के दौरान। अवलंब पंजाब को भी बीजेपी को एक चांस देना चाहिए। कमेंट आपका
सर? बिल्कुल दे रहा है इस बार, पंजाब दे रहा है। और मैं एक बात बता दूं, बातों में मैं भूल गया था सर, जट सिखों का अच्छा वोट मिलेगा। मैंने आज एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने जिक्र किया कि हमारे स्कूल में लगभग 30-35 लेडीज काम करती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है सर, 2017 और 2022 के चुनाव में मैं उनसे जब पूछता था किसको वोट देना है, तो सारे एक ओर से सर पंजाब में एक ही वर्ड ही सुनाई देता था, झाड़ू 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 झाड़ू। सर इस बार हमने जब पूछा तो उन्होंने बोल दिया मोदी 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 मोदी।
ओके
तो सर ये जट सिंहों की आवाज है। अच्छा पता है क्यों सर? इन्होंने अपनी गुंडागर्दी से ना सर लोगों, मतलब लोग अक गए।
चलिए आगे चलते हैं। हाय सर, वी ऑफन से इलेक्शंस आर फॉट ऑन ग्राउंड, बट ध्रुव राठी गेटिंग सो मच व्यूज श्योरली विल मीन समथिंग। इट विल बी फुलिश टू से नो इम्पैक्ट एंड इट इवन रिफ्लेक्टेड इन फेज वन सीट लॉसेस। रियली क्या टिप्पणी आपकी?
सर मैं एक बात बताऊं, एक यूपी का एक YouTube चैनल है, उनके श्रीमान जी जो हैं वो लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने एक पोल कराया कि हु इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द कंट्री। तो 97% लोगों ने कहा राहुल गांधी, 3% ने कहा मोदी।
तो उनके सब्सक्राइबर राहुल गांधी वाले ही होंगे।
तो सर इसका मतलब क्या है कि एक क्लास है वो कहता है कि भैया बेशक हम ना जीते पर बातें तो अच्छी करो। क्यों सर? जमीन पे बेशक मत जिताओ पर कम से कम बातों में तो जिता सकते हो यार।
हाँ बिल्कुल, शेख चिल्ली तो बनने में क्या दिक्कत है।
सत्यहिंदी.com और इस प्रकार के जितने चैनल्स हैं, ये सर आखिर इस देश में 30-40 करोड़ लोग हैं ना जो वो बातें सुनना चाहते हैं। ओ मोदी हार रहा है, ओ मजा आ गया, ओ तेरी रही। तो सर ध्रुव राठी इज वन ऑफ देम, तो ध्रुव राठी इज वन ऑफ देम जो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। वो हरियाणा में सर एक कहावत कहते हैं, अरे तेरी शक्ल बुंडी है, बात तो अच्छी कर लिया कर। तो सर कुछ मत करो, बातें तो अच्छी कर सकते हो ना, कम से कम पब्लिक खुश हो जाए।
सचिन खंडेलवाल, जय श्री राम, प्रभु कृपा से अब हिंदू योद्धा मोदी जी टॉप गियर में आ चुके हैं और उनके धुआंधार भाषणों से सभी अधर्मी हतप्रभ हो गए हैं। हिंदू पूर्ण जग चुका है और कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छी बात है, तो जी आप भी यही कह रहे हैं।
बिल्कुल
सचिन खंडेलवाल, नमस्कार संजय जी, योर टेक ऑन ईसी नोटिस टू मोदी। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है भाई, शिकायत होती है तो नोटिस जाता ही जाता है, रूटीन प्रक्रिया है। JR, हेलो सर, सीम्स लाइक ध्रुव पॉटी वॉचेज यू एविडली ट्राई टू काउंटर योर व्यू पॉइंट ऑन डीप स्टेट। अच्छा, हमारे भी चर्चा कर दी उसने, वेरी गुड, कॉलिंग इट व्हाट्सएप एनी इन्फ्लुएंस न्यूट्रल हिंदू वोट। कौन देखता है इस ध्रुव राठी को? मैं बताऊं आपके कैसे बनते हैं, इसके ऊपर भी शोध कर लीजिए कि ये जो है व्यूज कई बार यूट्यूब के जो जिन जो लोग यूट्यूब को फंड करते हैं उन्होंने ही ध्रुव राठी को खड़ा किया हुआ है। और इसको जो है ये आपके अरविंद केजरीवाल वाला जो गैंग है, जो सोरोस वाला गैंग है, उन्होंने मिलके इसको खड़ा किया, इसीलिए इसको जर्मनी ने बैठाला, इसको उन्होंने पूरी टीम दे रखी है। और जो व्यूज जनरेट होते हैं वो इसके अधिकतर बाहर जनरेट होते हैं। लोगों ने एक फैक्ट पकड़ा कि भाई इसके जो है वो मिलियन व्यूज पहुंच जाते हैं 2-4 घंटों में, और उसके बाद भी आप देखेंगे कि YouTube इंडिया पे ये कभी ट्रेंड नहीं करता, तो फिर ये व्यूज कहाँ से आ रहे हैं? अगर
सर
इंडिया
मैं
से
आपको
व्यूज आ
बताऊं,
रहे हैं तो ट्रेंड करता है ये YouTube पे
मैं
इंडिया
आपको बताऊं, आज से करीब 5-6 साल पुरानी बात है, फेसबुक पे एक महिला हुआ करती थी, हम यादव उसका नाम ऐसे कुछ नाम था, पूजा यादव इस टाइप की, और वो पता उसकी ना रोज एक बहुत शानदार फोटो, घरेलू महिला थी, और वो एंटी बीजेपी बातें लिखा करती थी अपनी वॉल से। सबको मालूम था कि ये कहीं विदेश में बैठ के कोई इसका चैनल चला रहा है, और वो बकायदा सर आखिर किसी महिला की रोज एक नई बढ़िया प्रोफेशनली खींची गई फोटोग्राफ है अगर, तो आखिर उसकी फोटो कोई तो खींचेगा, तो वो दिखता था। अच्छा, उसके सर लाइक्स होते थे लाखों में, उसके फॉलोअर्स होते थे लाखों में, पर मेरा और उसका एक भी म्यूचुअल फ्रेंड नहीं था, एक था शायद, एक या दो थे। मैंने कहा यार एक बात बताओ, जो नेचुरल फॉलोअर्स हैं हमारे फेसबुक पे, तो मेरे अगर आपके 5,000 फ्रेंड्स हैं तो उसमें से 1,200 1,400 1,500 म्यूचुअल फ्रेंड्स होते थे, उसका मेरा एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या था? वो सारा का सारा, वो बॉट्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको, वहीं से वो सारे व्यूज आ रहे थे, वहीं से सारा वो चल रहा था। फिर एक दिन वो अचानक फेसबुक से गायब हो गई, ऑल ऑफ अ सडन।
यही ध्रुव राठी के साथ होने वाला है।
यही ध्रुव राठी के साथ हो रहा है।
मनीष सर, मोदी जी चुनावों में तो जो शांति दूतों से खतरे हैं सनातन पर, उसका तो जनता को बड़ी बात अवगत कराते हैं और क्रियान्वयन में करोड़ों के वजीफे देते हैं। यार आपको पता है ना कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है? नहीं पढ़ा आपने लगता मनीष जी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसमें एक मेजर पॉइंट ये है कि मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को रिस्टोर किया जाएगा। क्यों रिस्टोर किया जाएगा? क्योंकि वो स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई। ध्यान है आपको, उनका जो बजट था वो 40% घटा दिया, 40%, 5,000 करोड़ से घटा के कर दिया 3,000 करोड़, और उसमें से भी बहुत सारे जो है इस तरह की ये चीजें हटा दिया। तो एकदम से तो 5,000 से जीरो तो नहीं किया जाता। नेक्स्ट, मोदी 3.0 में क्या SGPC, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मिशनरीज और बिकाऊ मीडिया पर कोई कार्यवाही होगी क्या? लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत पोटेंट टूल है ये। जी आपकी टिप्पणी।
सर देखिए, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी एसजीपीसी को टच करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे तो कार्रवाई एक तरह से शुरू हो चुकी है, और मिशनरीज का भी सर बड़ा बड़ा डाइसी सा मामला है, और मिशनरीज पे जो कार्रवाई हुई है, जैसे जो एफआरसीए जो उनके थे वो सब जो कैंसिल हुए, उनकी फंडिंग पर रोक लगाई गई, उनकी एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है, पर अभी पूरी तरह जीरो नहीं हुई है, उनमें समय लगेगा, पर उनकी फंडिंग पे बहुत बहुत प्रभावी तरीके से रोक लगी है। और ये हम बिल्कुल मोदी 3.0 में निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होते देखेंगे, पर अभी एसजीपीसी पे मुझे नहीं लगता कि
हाँ, वैसे SGPC जो है वो सिख और हिंदू रिलेशंस अगर सुधारने हैं तो SGPC का तो इंतजाम करना पड़ेगा।
जी।
नेक्स्ट, आयुष गर्ग, यूपी में कितनी सीट्स आएंगी टोटल जी,
78
आप बताएं।
78
78
हाँ जी,
दो
आज की
कौन सी
तारीख,
नहीं आएंगे?
अभी फिलहाल मैं कन्नौज और मैनपुरी,
अच्छा
78 है, प्लस दो जो है प्लस माइनस कर लीजिए,
ठीक है, 2 प्लस माइनस मतलब 80 तक आ सकती हैं।
बिल्कुल सर यू नेवर नो, पर
अच्छा,
76 प्लस माइनस 2 में कर लीजिए आप बेशक।
ये ऋषि शर्मा का क्वेश्चन लाइए जरा, ऋषि शर्मा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चमकीला ऑन पंजाब इलेक्शन?
ओ बहुत जबरदस्त अंडरकरंट है, चमकीले फिल्म ने पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। चमकीले फिल्म में यह दिखाया गया है कि एक दलित गायक को एक हिंदू दलित, अच्छा एक तो बहस, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन है चमकीला हिंदू था या सिख था, भैया चमकीले का नाम धनी राम था, लोग कहते वो तो पगड़ी बांधता था, तो हिंदू पंजाब का पहले तो हर आदमी पगड़ी बांधता था, जैसे राजस्थान के लोग पगड़ी बांधते थे, जैसे हरियाणा के लोग पगड़ी बांधते थे, उसी तरह पंजाब के लोग पगड़ी बांधते थे, जैसे पंजाब हरियाणा राजस्थान के हर रीजन की पगड़ी का स्टाइल अलग होता है, पर मेवाड़ की पगड़ी अलग है, मारवाड़ की अलग है, हड़ौती की अलग है ना, ये हरियाणा राजस्थान के लोग इस बात को समझते हैं
बिल्कुल, बिल्कुल। उसी तरह उनके उनके रंग से भी पता चल जाता है किस कम्युनिटी का।
उसी तरह पंजाब की एक पगड़ी थी, तो पगड़ी तो पंजाब में हर व्यक्ति पहनता था, केश भी रख लेता था, इसीलिए तो मैं तो खुद मैंने अपने अपने एक वीडियो में बताया था मैंने कि मुझे शादी के 20 साल बाद ये पता लगा कि मेरी सास सिख नहीं हिंदू महिला थी, सर शादी के 20 साल बाद मुझे पता लगा कि माय सास वाज अ हिंदू लेडी नॉट अ सिख लेडी। तो सर धनी राम वाज अ हिंदू जिसने जरूरत पड़ने पे केश कटा दिए और बीड़ी पीता था, तो यही तो उसको बोला गया जब कनाडा गया, तो उसको जो फतवा दिया गया, आपने सर फिल्म देखी है?
नहीं
संजय सर, अरे सर देखिए, मतलब दैट फिल्म इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट।
पंजाबी में है या
हिंदी में है? सर हिंदी में है।
अच्छा
फिल्म हिंदी में है और उसमें एक डायलॉग है सर, चमार हूं भूखा तो नहीं मरूंगा सर, इस डायलॉग ने ना तहलका मचा रखा। बाद में दिखाया गया कि सब जो है सवर्ण अपर कास्ट सिंगर्स मिलके साजिश करके उसको मरवा देते हैं, वो एक जगह बोलता है कि अश्लील गाने तो सभी गा रहे हैं, सिर्फ आपको मेरे ही सुनाई दे रहे हैं या आप सिर्फ मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। सर ये जो डायलॉग है ना, ये पूरे पंजाब के दलित कम्युनिटी में गूंज रहा है अंदर अंदर। इस वक्त सोशल मीडिया, पंजाब का सोशल मीडिया चमकीले की चर्चा से भरा हुआ है।
द्वैपायन बोस आस्क बाबा जी अबाउट लो वोटर टर्नआउट इन यूपी, एनी इफेक्ट ऑन बीजेपी, मनीष कश्यप ज्वाइनिंग बीजेपी, रिजल्ट ऑफ बिहार, एनी चेंज?
जी मनीष कश्यप क्या है,
यूट्यूबर
ज्वाइन कर लेने से, मनीष कश्यप इज अ सिंपली अ यूट्यूबर है। अब उसकी क्या ओपिनियन, वो कितना बड़ा ओपिनियन मेकर है, उससे मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ सर लो वोटर टर्नआउट में मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भैया ये लो वोटर टर्नआउट इज गोइंग टू हार्म द अपोजिशन इन यूपी, ये अपोजिशन के ठंडेपन से, अपोजिशन के नकामे नकम्मापन से, नकारेपन से, वो उनका वो लो वोटर टर्नआउट है, हिंदू वोटर निकला है पहली बात। दूसरी चीज सर पैसा बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल पैसा नहीं बांटा गया, दारू नहीं बांटी गई, कैश बंटता था सर, एक एक परिवार को 500 से लेके 5000 रुपए तक दिए जाते थे, अगर एक परिवार में 10 12 15 वोट है 5000 रुपए तक देते थे कैंडिडेट्स, वो पैसा इस बार नहीं बटा है। कुछ कुछ गांव में कुछ 100 200 वोट ऐसे थे जो बिना पैसे के घर से निकलते नहीं थे, आप गांव में जाके पूछिए।
बिल्कुल चलिए आगे चलते हैं। जेबीजेपी बाबा जी पंजाब पर एपिसोड्स के लिए प्रणाम, करते रहो। बिल्कुल आप लोगों को बता दूं बाबा जी का यूट्यूब चैनल है बाबा की खरी खोटी, तो उसमें आप ये काफी करते रहते हैं, डेली के 3-4 वीडियो डालते हैं, आप लोग देखें। नेक्स्ट जे आर, हाय सर, डिवाइडिंग द इलेक्शन इन 7 लॉन्ग फेजेस क्रिएटिंग कंफ्यूजन। अरे भाई आज से थोड़ी हो रहा है 7 फेज, आज से थोड़ी हो रहा है, 19 का भी 7 फेज में था, 14 का भी 7 फेज में था, मेरे ख्याल से 2009 का भी इतने फेज में था।
हाँ, यूपी यूपी का हर इलेक्शन सर 7-8 फेज में हो रहा है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो।
नेक्स्ट, गौरव भट्ट सैम पेट्रोला ने अच्छी आग लगाई है, वेरी गुड। नेक्स्ट, JBJP ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जाति आंकड़े किस वेबसाइट पर है? ये किसी वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, ए पांडे, इफ इंडिया ग्रोज विथ 7.8% इन्फ्लेशन, 4.6% करेंसी डिप्रिसिएशन, लेस देन 1% पर कैपिटा विल रीच $12,000 इन 14 ईयर्स, वेस्ट कैन सप्रेस दिस थ्रू रॉल विंची, ग्रोज विथ 7.8%। हाँ सही है आपकी बात, आई एग्री, इसमें कोई बात नहीं। तो आइए इसी पॉइंट पे अब हम अपना आज का वीडियो समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और रामदास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री
जय
राम।
श्री राम, जय जय श्री राम।